اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو علی کے دامن کو پکڑ لو. مگر انسانوں نے کہا تجھے رسول مانتے ہیں, تجھے کل ایمان مانتے ہیں, تجھے اسلام کا وارث مانتے ہیں, قرآن کا وارث مانتے ہیں, تیری ہر بات پہ یقین ہے, مگر علی کو نہیں مان سکتے. اس انکار کے نتیجے میں اسلام کا نور مکہ و مدینہ و عربستان اور اس کرہ ارض پہ چھا گیا تھا, اس پر پھر ظلمت آ گئی, اندھیر آ گیا, خانہ کعبہ میں پھر استبل بن گیا اور عورتوں کی عزتوں کو لوٹ لیا گیا. اس کے نتیجے میں نواسا رسول کو اٹھنا پڑا, پورا خان وادہ کو لے کے کربلا کے دشت و کربلا میں پہنچے, اپنا سر دے دیا, وارث سیدہ کو نین نے اپنی چادر دے دی اور اسلام کو اثر نو زندہ کیا اور اسلام کی ایک تاریخ نئے طریقے سے انسانوں کو بتلائی. عزیزہ دوستو, 1947 میں یہ خطہ ارض پاکستان لاکھوں انسانوں کے خون کی قربانی دے کر اور ہزار ہاں مسلمات کی عزت کی قربانی دے کر حاصل کیا. ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ پاکستان کی قوم وہ قوم ہے جس نے یہ خطہ ارض حاصل کیا اور اقوام عالم کو یہ پیغام دیا کہ ہم 20ویں صدی میں 1400 سال کے بعد پاکستان میں اسلامی نظام رائج کر کے دکھائیں گے. یہ اس قوم کا, اس وطن کا مقصد حیات قرار پایا. مگر ہوا کیا ہے, 4 دن پہلے کی بات ہے, چلاس کے مقام پر شیعہ قافلے, شیعہ بسوں کو روکا گیا, مسافروں کو اتارا گیا, پل پہ کھڑا کیا گیا, 26 افراد کو اٹھا کے پل سے نیچے دریا میں پھینک دیا گیا, کچھ افراد کو درختوں سے باندھ کر ان کی آنکھیں نکال دی گئیں, باقیوں کو ذبح کیا گیا, 100 افراد کا پتہ نہیں کہ ابھی تک وہ کہاں ہیں. یہ چلاس کی صورتحال ہے. گلبت میں بجائے ان مظلوم قوم کے ساتھ اور اس ناحق خون کے بہانے کے ساتھ کوئی تسلی, کوئی تشفی اور کوئی ہمدردی جگانے کی بجائے اس ملک کے وزیر داخلہ جس کو رحمان کہنا رحمان کی توہین ہے, جس کا شیطان ملک کہنا عین حقیقت ہے, اس نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران بلوچستان میں بھی ہنگامہ کر رہا ہے اور اب گلگت کو بھی بلوچستان بنانا چاہتا ہے. اور حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ کون ہنگامہ خیزی کر رہا ہے, کون خون ناحق بنا رہا ہے. اس وقت گلگت میں کرفیو ہے شیعہ آبادیوں پہ, کوئی شیعہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, کاروبار نہیں کر سکتا. آگاہ حسینی کے بارے میں پتہ نہیں ہے, علماء کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور کسی کو خبر نہیں ہے اور حکومت کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی. صرف گلگت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ شہر جنگ اس بات کا گماز ہے کہ کتنے ثبوتوں کے یہاں خون دیا گیا ہے. محمد حسن شاد 1980 سے لے کے اب تک 20 خون لٹے گئے ہیں. شور کوٹ میں ماسٹر منظور میرے پاس آیا کرتا تھا, وہ کہتا تھا مجھے اپنے بھائی کا خون کا افسوس نہیں ہے, میرا بیٹا سر بازار قتل کر دیا گیا اس کا افسوس نہیں ہے, میرا گھر لوٹ لیا, میری بچوں کا جہیز لوٹ لیا اس کا افسوس نہیں ہے. مگر وہ شریف و نفس انسان کو بے جرم و خطا تھانے میں لٹا کر ننگا کر کے اس کی پشت پر کوڑے مارے گئے, کہتا تھا قاضی صاحب یہ بات برداشت نہیں ہوتی. یہ شیعوں کی حالت ہے, بلا اسماعیل خان میں ایک ایک کر کے 20 ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا ہے. پچھلے بار ہم ڈیرا اسماعیل خان گئے اور وہاں کے امام برگاہ جس کا سین بالکل خالی ہوتا تھا, وہاں اب جا کے دیکھیں ایک شہدا کا بہشت بنا ہوا ہے. ابھی کراچی میں آگا صلاح الدین کو قتل کیا گیا, 180 ڈاکٹروں کو قتل کیا گیا اور بغیر کسی جرم کے جس کو شیعہ سمجھتے ہیں قتل کر دیتے ہیں. اور ابھی واقعہ جو ہوا ہے, بشارت نامی ایک شیعہ نوجوان جو سینٹرل جیل کراچی میں تھا, उसको इंतजामिया जेल ने जानबूझकर इन नाम नहाद जालिम तालिबान के साथ कैद किया, और तीन आदमी वो थे, चौथा वो अकेला था। उन्होंने बशारत को वहां लटकाया एक रस्से के साथ, उसकी आंखें निकाली, फिर उसको इतना मारा कि उसको शहीद कर दिया, मगर जेल में इस कत्ल का पर्चा नहीं दर्ज हो सका। ये हालत है। और इसी तरीके से पूरे वतन में पारा चिनार का 4 साल तक महासर रहा, रास्ते बंद रहे, मेडिकल तक ना जाने दिया गया, और वहां जंग हुई, और वहां के नौजवान उठे, और वहां के सपूत जो मैं समझता हूं कि इस सरज़े ज़मीन में वाकई दलील ओ बरहान और हुज्जत खुदा शहीद आरिफ हसन हुसैनी का बेटा तड़प कर कुम से आया, उसको मैं उसकी माँ ने मुझे फोन किया, ये आया है और कहता है मैंने परा चिनार जंग में जाना है, इसको रोको ये शहीद हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि तुम क्यों जाना चाहते हो? उसने कहा ये नहीं हो सकता कि मेरे मादर वतन पर, मेरे इलाके पर, मेरे बुजुर्गों की कब्रों पर दुश्मन आए और मैं कुंभ में आराम से बैठा रहूं, मेरे अंदर हुसैनी का खून है, मैं खुद जाऊंगा। मैंने कहा रास्ते बंद है, कहने का जहां तक जा सकूंगा जाऊंगा, मारा ही जाऊंगा ना, वो तो शहादत हमारी विरासत में है। मैंने कहा ये हलाकत होगी, ये शहादत नहीं होगी। उसने कहा इमाम ज़माना मेरे साथ है, तुम देखोगे मैं मैदान जंग में पहुंचूंगा। चुनांचे चंद दिन के बाद उसने वहां से रब्ता किया, हवाई जहाज की सीट ली, गया, नौजवानों को इकट्ठा किया, जंग लड़ी, और इन जालिमों को ऐसे भगाया जैसे गीदड़ भागते। हुसैनी के हुसैनी बेटे की शमूलियत से यह पूरा लश्कर वहां से भागा। 400 से ज्यादा इनके लोग फिनदार हुए, हमारे कुल 80 लोगों ने जामे शहादत नोश किया। और वो खड़ा था कि एक मार्टर का गोला आया, उसके गिर 3 अफराद और खड़े थे, एक खतून थी, वो सब शहीद हो गए, मगर अली हुसैनी की दोनों टांगे मजरूह हो गई। आज वो दर्द के साथ मजरूह हालत में चलता है, और आज वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। इंशाअल्लाह ताला हम इस वतन में बता देना चाहते हैं कि हमारे पास हमाम हुसैन शहीद कम नहीं है, हमारे पास अली हुसैन नौजवान जैसे ऐसे कम नहीं है। हम अपनी मजरूह टांगों के साथ, अपने जख्मी दिलों के साथ, अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ उठेंगे, इमाम ज़माना के परचम को सर बुलंद करेंगे, अब बातल को निकालेंगे, और यहां इस्लाम को सर बुलंद करके रहेंगे। अजीजान मोहतरम हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये ठीक है यहाँ पैसे का काम करता, अगर आप डेरा इस्माइल खान जाए बन्नू रोड पर तो वहां आपको 100-150 इतने बड़े घर नजर आएंगे जो ताजा बने हुए, 2-2, 3-3 एकड़ में घर हैं तालिबान के, और हर घर के एक मस्जिद है जो 2-2 कनाल में बनी हुई है, तो उसके गुंबद भी है, उसकी मेहराब भी है। ये मस्जिद जो वजीरस्तान से आके तालिबान ने यही बनाए हैं, ये सारी तबाही इस मुल्क की, इस वतन की, वतन जाफरिया, वतन पाकिस्तान की, मिल्लत जाफरिया की, इन मसाजिद से मुसीबतें उठती हैं। यहाँ ये लोग आते हैं, यहाँ चस का कारोबार भी होता है, यहाँ असरे का कारोबार भी होता है, यहाँ टारगेट किलिंग का प्रोग्राम भी बनता है, और ये ISI और एजेंसियों और हुकूमत की नोक के नीचे होता है, क्योंकि पीछे अमरीका कहता है तुमने ये काम करना है। जैसे ये चल रहे, अमरीका को क्या हुआ है, क्यों इस्लाम के इतना दुश्मन है? इससे कहते हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं अमेरिका की दानिशगाहों में, तसव्वुर हिसाबी असर व ज़मान पर PhDs करवाई जा रही हैं, तशय्यों पर और करबला पर बेपनाह रिसर्च हो रही है। BBC ने कहा कि करोड़ हा इंसानों के नाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर है, दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं कम अज कम 3 मजार जरूर बर्पा होती है, और यह सिलसिला करबला का चलता ही जा रहा है। उनकी कोशिश यह है कि जिस तरीके से नमरूद ने चाहा था कि हज़रत मूसा ना पनप सके, ना उठ सके और ना चल सके, कि आज हुसैनियत को रोक दिया जाए, तसव्वुर साबिर असर ज़मान को रोक दिया जाए, मगर ये रुकने ना पाएगा। तुमने इसराइल की जंग में देख लिया, कंडोलिज़ा राइस ने कहा था कि हम जनूबी लबनान में इंसानी तारीख को, इंसानी तहजीब को खत्म करके रख देंगे, देयर विल बी अ न्यू मिडल ईस्ट इन द वर्ल्ड, हम एक नया मशरिक़ वुस्ता को बनेंगे। एक दफा दूध पा लीजिए, 33 रोज जंग हुई, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई है। इन्होंने 36,000 क्लस्टर बम जनूबी लबनान पर फेंके। क्लस्टर बम जमीन में 30 फुट नीचे जाता है और उलट देता है हर बिल्डिंग को, हर चीज को। और इनका ख्याल था कि तमाम तहजीब, तमाम आबादी, तमाम इंसान खत्म हो जाएंगे, मगर 36,000 बम फेंकने के बाद जब नतीजा देखा तो उसके नतीजे में कुल 14 नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया। ये अफशर रिपोर्ट जो इसराइल की है उसमें है कि हमारी जितने में भी सिपाही फिनार हुए वो फ्रेंडली फायर से हुए, वो तोपों के और टैंकों के गोले इधर बरसाते थे, लाखों उनको जाते थे। और उसी रिपोर्ट में ये है, सिपाहियों ने बयान किया है कि हम आगे बढ़ते थे तो देखते कि सफेद लिबास वाले लोग हैं, उनके हाथों में तलवार है। ये बात मुसद्दका है और ऑफिशियल है और अमेरिका और इसराइल के उनकी हुकूमतों की रिपोर्टों में मौजूद है कि हम देखते कि सफेद लिबास में लोग हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं, हम उनके ऊपर गोले बरसाते हैं, उन पर गोला पड़ता नहीं, पड़ता है तो असर नहीं करता। वो हमारे करीब आते थे, आके तलवारों से हमारे शाने काट देते थे। ये तशय्यो है, ये हुसैनियत है, ये सब ज़मान है, ये परचम आगे बढ़ना ही बढ़ना है। सिर्फ देखना कि हमने क्या करना है, हमारे जिम्मे क्या आता है ताकि हम इंसान इमाम ज़माना में शामिल हो सके। सईदा कुनैन के रूबरू जिस दिन वो कुर्ता लेके सईद शोदा का इंसानियत के सामने आ सके तो हम सईदा की तरफ हों, इस तरफ ना हो। बस ये देख, एक दो पड़े में पानी पी लूं। दो अजीजो, ये एक बैन अल-अक़वामी साजिश। आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है ये अमेरिका करवा रहा है और मगरबी यूरोप करवा रहा है। उनका अपनी कौमों को पैगाम ये है, ऑक्सीडेंटल्स बी वी आर मुस्लिम्स आर कमिंग अगेन, अहले यूरोप बेदार हो, जो मुसलमान दोबारा स्पेन को फतह करने आ रहे हैं। और उनके बड़े बड़े जो मशीन कोई प्रोफेसर हैं वो भी कहते हैं कि ये आएंगे एंड दे विल पुट द क्रॉस टू डेथ, ये इंसानियत की मौत वाकया कर देंगे। ये होना ही होना है। देखना ये वही सवाल कि हमने क्या करना है। हमने सईदाए ताहरा की तरह कि उसका घर जिला मगर उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, जनाब अमीर के गले में रस्सी पड़ी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। करबला में किसी ने ये नहीं कहा कि हम परेशान हैं, हम अपने बेटे देंगे, अपने घर चलाएंगे, मगर इस वतन की आबरू को नीचे नहीं आने देंगे। हम अपने असली दुश्मन को पहचानेंगे और हक का साथ देते हुए, कुर्बानियां देते हुए इज्जत की जिंदगी दिएंगे। हाय हाथ में न जिल्ला कहने वाली कौम कभी जिल्लत को गले नहीं लगा सकती। और इसका तरीका क्या है? अब तक 20वीं सदी में अक़वाम आलम की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो दुनिया का निज़ाम है, वो इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के तहत चल रहा है। हर मुल्क का एक आइन है, हर मुल्क को तकसीम कर दिया गया, उसमें एक आइन है, एक निज़ाम है। ये निज़ाम बातिल है, इंसान एक है। और खुदा के लिए खुदा ने भेजा है कि अल्लाह की अबूदियत करके वापस आके सुरखरू हो जो, मगर इंसान ने कहा ये बात नहीं। अब इंटरनेशनलिज्म खत्म हो रही है, अब फकत एक परचम होगा सब ज़मान का, और एक तरफ उसके इंसार होंगे, दूसरी तरफ शैतान के मानने वाले होंगे, उनके पास फौजें होंगी, ताकतें होंगे, एटम बम होंगे, मगर ये चल नहीं सकेंगे। ये खून के सामने और इस जज्बे के सामने अब अभी आगा खामनई जो हमारे, वो एक ईरान के ताजदार नहीं है, वो एक मुमल्कत के सरपरस्त नहीं है, हैं मगर हम नजर ऐसे आते हैं। असल में वो क्या है कि वो फर्जंदे कुरान है, वो फर्जंदे रसूल खुदा है, वो फर्जंदे इस्लाम है, वो जनाब जहरा के जिगर गोशा है और साबिर सजमान के हकीकी नाब बरहक है। उनका हर लफ्ज साबिर सजमान की रजा के साथ है, चूंकि वो सब ज़मान के रजा के साथ हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ। वही हमें ईरान से मोहब्बत नहीं है, हमें उस शख्स से मोहब्बत है जो खुदा की तरफ से सकल पूरी इंसानियत पर हुज्जत कातिया है, बुरहान है, दलील है, और उसका हर लफ्ज़ इंसानियत के लिए सिरात मुस्तकीम है। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। तुम लाख जतन कर लो इसराइल तबाह होगा, तुम लाख जतन कर लो तालबन तुम तबाह होगे, तुम लाख जतन कर लो रहमान मलक तुम तबाह होगे। ये शिया उठेगी, ये गिलगित आबाद रहेगा, ये पलस्तीन आबाद रहेगा, ये जंग आबाद रहेगा, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह इस्लाम के परचम तले रहेगा और अब तक रहे। रहेंगे। तुम अपने तीर आजमाओ, हम अपने जिगर आजमाएंगे।